ओम शांति। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। पुरुषोत्तम संगम योग, ये है चढ़ती कला का युग। सारे कल्प के अंदर भाग्य विधाता बाप ने हम बच्चों के लिए स्पेशल पुरुषोत्तम संगम युग रचा, क्योंकि सतयुग से लेके कलयुग अंत तक हमारी उतरती कला होती है। सतयुग और त्रेता युग में हम धीरे धीरे उतरते हैं और द्वापर में उतरती कला के बजाय जब आत्मा देह के अभिमान में आती है तो गिरती कला चालू हो जाती है। सीढ़ी पर से अगर पीछे से कोई लात लगाता है तो कितना जल्दी गिर जाता है। तो विस्मृति हुई आत्माओं को रावण ने पीछे से जो लात लगाई, तो कहां 16 कला संपूर्ण थे, कहां 9 कला बन गए। बाबा ने आकर के हम बच्चों को अपना बनाया, अपना बना करके पहले तो हमारा जन्म ही चेंज कर दिया, शूद्र से ब्राह्मण बना दिया और अपनी गोदी में बिठा दिया। क्योंकि हम जो इतने ऊपर से गिरे तो बहुत चोटें खाई हम लोगों ने, तो रहम दिल बाबा को बच्चों के ऊपर बड़ा रहम आया, क्योंकि वो दया का सागर है। तो उसने हम बच्चों को अपने गले लगाया, अपना बनाया। हमेशा गायन किया जाता है, चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। बाबा कहते मीठे बच्चे, चढ़ती कला के कारण तेरे भाणे माना तेरे खातिर, तुम बच्चों के खातिर सारे विश्व का भला हो जाता है। चढ़ती कला तुम्हारी होती है, तुम बच्चों की मैं आके चढ़ती कला करता हूं, परंतु सारे विश्व को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाता। तो इतने हम परम सौभाग्यशाली कहो, पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं जो हमारे ऊपर सारे विश्व का भला अर्थात कल्याण जो है उसका आधार है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को सदैव ये याद दिलाते हैं कि तुम बच्चे आधार मूरत और उद्धार मूरत हो, तुम फाउंडेशन में हो। क्योंकि वैसा भी आप जब कल्प वृक्ष का चित्र देखते हैं तो ब्राह्मणों का जो स्थान है वो मूल में, और मूल का हमेशा काम होता है सारे वृक्ष को जल और खाद पहुंचाने का। मूल का सारे वृक्ष के साथ कनेक्शन होता है, अगर मूल सूख जाता है तो वृक्ष भी सूख जाता। तो हम जो ब्राह्मण मूल में बैठे हुए हैं, हमारी तमो प्रधानी अवस्था के कारण ही सर्व मनुष्य आत्माओं की अवस्था, प्रकृति की अवस्था भी ऐसी बन गई। अब वापस बाबा ने जो हम बच्चों को निमित्त बनाया कि तुम बच्चों को इस विश्व का परिवर्तन करना है, तुम विश्व परिवर्तक हो, क्योंकि तुम विश्व के पूर्वज, सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज होने के नाते सर्व को सुख शांति शक्ति आनंद और प्रेम जो ईश्वरीय प्राप्तियां हैं वो देने के लिए हम निमित्त हैं। और वैसे भी आप देखेंगे जो पूर्वज होते हैं, बड़े होते हैं घर के, उनको हमेशा ये ख्याल रहता है कि हमारी जो वंशावली है वो सदा के लिए सुखी रहे, सदा फलती और फूलती रहे और आगे बढ़ती रहे। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को अलग अलग टाइटल दे करके, अलग अलग स्मृतियां दिला करके सदैव स्मृति देते हैं, शक्ति भरते हैं हम लोगों के अंदर, जिस शक्ति के आधार से विश्व का परिवर्तन होता। जिस दिन से हम लोगों ने बाबा की गोदी में जन्म लिया, हमारी चढ़ती कला तो उसी दिन से चालू हो गई। गिरना बंद हो गया अर्थात चढ़ना चालू हो गया। हमारा जो लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनने का, उसकी जो चढ़ाई है वो चढ़ाई है बड़ी ऊंची। जिसका गायन किया जाता है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। अगर चढ़ गए उस चाड़ी के ऊपर तो वैकुंठ का रस मिलेगा, और अगर चलते चलते पैर फिसल गया तो चकनाचूर हो जाएगी। क्योंकि हम सब यात्री हैं। यात्री जब यात्रा के ऊपर निकलते हैं तो जहां पर यात्रा के लिए जाते सदैव उसको उसकी याद बनी रहती। आप लोगों ने खुद भी यात्राएं की होगी या औरों को भी देखा होगा, यात्रियों को जब यात्रा पर जाते हैं तो उसका जय जयकारा बोलते हैं। बद्रीनाथ जाएंगे, पहाड़ी चढ़ेंगे, बद्रीनाथ की जय, बद्रीनाथ की जय, केदारनाथ की जय, जहां जाएंगे उसकी याद उनको बनी रहती है। तो हम सब बाबा के बच्चे, जो हमारा लक्ष्य परम धाम और नई दुनिया, मुक्ति और जीवन मुक्ति का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने वाला जो बाबा है, हमें भी सदैव उसकी याद जो है वो बनी रहनी चाहिए। क्योंकि हम यात्रा के ऊपर, तो यात्रा पर जब चलते हैं तो जितना जितना आगे बढ़ते हैं उतना उतना ऊपर चढ़ते हैं। कभी कभी चलते चलते यात्रु थक जाते हैं। थकने के बाद कोई कोई ऐसे इत्तेफाक बीमार पड़ जाइए या कुछ होगा तो वापस आते हैं, नहीं तो वापस आने की बात नहीं होती है, परंतु थोड़ा बीच में ठहर जाते। संगम युग में तो वापस आने की बात ही नहीं है। जब हम इस अमरनाथ की यात्रा पर है, अमर बाबा की यात्रा पर, हमारी सदैव चढ़ती कला है, परंतु कभी कभी चढ़ने वाले जो है उनको थकावट आती है, और थकावट के बजाय चढ़ने के बजाय ठहरती कला हो जाती। उतरती कला नहीं होती संगम पर, वो डिक्शनरी में ही नहीं है उतरना, परंतु ठहरती कला जरूर होती है। और ठहर के जरा इधर उधर देखने का मजा ले लेते हैं। जिसको साइड सीन देखने की आदत होती है ना, तो चलता भी रहेगा, कोई सीन दिखाई पड़ेगी तो ठहर भी जाएगा और फिर देखना भी चालू कर दे। तो ये भी जो रूहानी यात्री है, चलते चलते कभी थक जाते हैं, तो थकने के कारण थकते इसीलिए हैं क्योंकि इधर उधर उनकी नजर चली जाती, सामने देखने के बजाय, अपने लक्ष्य को देखने के बजाय जो दूसरे चल रहे हमारे साथ उनकी तरफ ध्यान चला जाता। बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते, बच्चे सी फादर फॉलो फादर, उसके बजाय कभी कभी आपस में यात्रु एक दो को देखते हैं, देखते हैं तो फिर क्या होता है, अगर खुद काफी चाड़ी ऊपर चढ़ गए तो बड़े खुश होते हैं कि वाह हम तो बहुत ऊपर चढ़ गए, तो अभिमान आ जाता है। कभी देखते पीछे आया हुआ मेरे आगे चला गया, मैं तो पीछे ही रह गया, तो दिल शिकस्त हो जाता। तो ये अभिमान और दिल शिकस्त माना ना उम्मीद, पता नहीं मैं चढ़ सकूंगा या नहीं चढ़ सकूंगा, इस नाउमीदी के कारण स्पीड कम हो जाती है और उसके लिए कभी ठहर जाती। सदैव हमारी चढ़ती कला रहे और सर्व का भला होता रहे। वास्तव में देखा जाए तो बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि बच्चे अभी चढ़ती कला का समय नहीं, अभी तो उड़ती कला का समय। चढ़ती कला का समय भी चला गया, बहुत बरस हो गए तुम चढ़ रहे हैं, अभी चढ़ना छोड़ के उड़ना चालू कर दो, क्योंकि चढ़ने के समय रास्ते में अनेक रोड़े आते हैं, अनेक चट्टाने आती है, जिसके कारण चलते चलते जो है स्पीड कमती हो जाती है, थकावट आती है। परंतु अगर आप उड़ना सीख जाएंगे, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को दो पंख नहीं पर चार पंख दिए, वैसे तो आप देखेंगे पंछियों को दो ही पर होते हैं, बाबा ने हमें ज्ञान और योग ये दो पंख तो दिए हैं, परंतु उसके साथ उमंग और उत्साह ये और दो भी पंख ऐड किए, तो हम दो पंखों से नहीं उड़ते हैं पर चार पंखों से उड़ते हैं। अभी आप विचार करो, जिसको उड़ने के लिए चार पंख है उनकी स्पीड कितनी होगी, और जब हम उड़ना चालू करते हैं तो नीचे की जो बातें हैं वो नीचे रह जाती है और हम ऊपर चले जाते। परंतु उड़ कौन सकता है, हमेशा हल्की चीज ये ऊपर रहती है, भारी चीज ये नीचे आ जाती है, इसका हम सभी को अनुभव है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को सदैव आत्माभिमानी बनने की समझ देता है, तारणा देता है, प्रैक्टिस करने के लिए सिखाता है कि आत्माभिमानी बनो। ब्रह्मा बाप की अगर हम जीवन कहानी देखते हैं, शुरू शुरू में जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई उस समय बाबा ने कितनी अपने ऊपर मेहनत किया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बाबा ने कापियां की कापियां लिख दिया, घर के जितने मेंबर थे उनके नाम से कापियां की कापियां लिख दिया, जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है, राधा आत्मा है, जितने मेंबर थे सब की कापियां भर डाली उनके नाम की, ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। तो बाबा ने जब इतनी प्रैक्टिस किया तभी उसकी आत्मस्थिति जो है वो इतनी पक्की हो गई, जो जब भी बाबा के सामने जाते थे तो सामने वाला भी आत्माभिमानी बन जाता। तो इसमें प्रैक्टिस की अति आवश्यकता है, क्योंकि आत्मा जो है वो एकदम हल्की है, सूक्ष्म है और हल्की है, और ये देह जो है ये भारी। वैसे भी आप देखेंगे देह के लिए क्या कहा जाता है, ये शरीर पांच तत्वों का बना है, पंच महाभूतों का बना हो, इसको मिट्टी कहा जाता है, ये मिट्टी का पुतला है। आप सभी को मालूम है मिट्टी में क्या आकर्षण होता है, आप किसी भी चीज को नीचे फेंको तो मिट्टी के अंदर, धरती के अंदर जो आकर्षण है गुरुत्वाकर्षण, उससे वो चीज क्या होती है, ऊपर नहीं जाती है पर नीचे गिरती। तो उसी प्रकार अगर हम देह के भान में रहते हैं तो ये देह रूपी मिट्टी हमारे को ऊपर उड़ने नहीं देती है, बाबा के पास नहीं जाने देती है, परंतु हमें नीचे खींचती। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ये पहला पहला लेसन पक्का कराया कि तुम इस देह से न्यारे चेतन आत्माएं हो, तुम अति सूक्ष्म हो, तुम बहुत हल्की हो, तुम सदैव उड़ते रहो। इसीलिए ऊपर जाने के लिए, उड़ने के लिए एक तो चाहिए हल्कापना, अर्थात आत्माभिमानी स्थिति। और दूसरी बात, हमने एक बोझा हमारे ऊपर नहीं ढोया, हमने अनेक बोझे अपने सिर के ऊपर रख लिए। खुद को तो देह समझा ही, परंतु देहधारियों को अपना समझ लिया, वस्तु पदार्थों को अपना समझ लिया। बोझा पड़ता गया हम आत्मा के ऊपर, हम आत्माएं भारी होती है। इसीलिए बाबा ने आके हमारे को ये पाठ पक्का कराया कि सबसे पहले तो ये पक्का करो कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा नहीं कोई, और कोई भी मेरा नहीं है, एक ही बाप है, और मेरा जो भी कुछ है वो सब कुछ तेरा है। भक्ति मार्ग में भी हम लोग गायन करते थे, मंदिर में जाते थे तभी गाते थे, हे भगवान जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है, और घर में आने के बाद तेरा है सो भी मेरा है। तो भक्ति में तो ये ठगी किया हमने, अपने साथ ठगी किया, भगवान के साथ क्या ठगी करें। तो उसका हमारे को क्या बदला मिला वो तो हम सभी ने अनुभव कर लिया। परंतु अभी बाबा कहता है कि अगर तुमको हल्का बनना है, तुमको अगर उड़ना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो सब कुछ तेरा कर डालो, मेरा नहीं रखो, तेरा का पाठ पक्का करो, मैं भी तेरा और ये सब कुछ तेरा। तो जब सब कुछ ईश्वर अर्पण कर देते हैं, हम एकदम प्लेन हो जाते हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। जब देह ही मेरी नहीं है तो मेरा क्या रहा। ब्रह्मा बाबा, भले बाबा प्रजापिता ब्रह्मा, इतने बच्चे, ढेर बच्चे, इतना बड़ा यज्ञ, परंतु बाबा ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि ये मेरा यज्ञ है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, शिव बाबा ने स्थापन किया हुआ यज्ञ है, ये सब यज्ञ के बच्चे, ये सब शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने कभी भी अपना नहीं समझा, इसीलिए वो कभी भी भारी नहीं हुआ। बाबा सदैव न्यारा रहा, सर्व को संभालते हुए, बच्चों को, बच्चों की इतनी परवरिश करते हुए बाबा को कभी चिंतित हुआ हुआ नहीं देखा। भले यज्ञ के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं आई, बेगरी पाठ भी आया, आप विचार कर सकते हैं, जिसके घर में 350 बच्चे होवे और खाने के लिए एक दाना नहीं होवे, उसकी क्या हालत होगी। आज किसी के पास अगर नहीं होगा, एक भी बच्चा होगा, नहीं भी बच्चा होगा, तो भी खुद के लिए भी कितनी फिक्र होती है, सुसाइड कर लेते हैं। और बाबा बड़े आनंद में रहा पड़ा था इतना होते हुए, ये कहाँ से आनंद मिला उसको। शिव बाबा ने प्रवेश किया इसलिए आनंद हुआ, ऐसा नहीं, उसने खुद का पुरुषार्थ किया, बाबा ने खुद के ऊपर मेहनत किया कि ये कुछ भी मेरा नहीं, ये सब कुछ बाबा का है, ये बच्चे भी बाबा के हैं, बाबा के बच्चे बाबा को संभालने, मैं भी तो उसका बच्चा हूँ। बाबा हमेशा ऐसे ही कहते थे, मैं भी तो उसी का बच्चा हूँ, बाबा बैठा है ना। तो जिस समय हम अपना जीवन ईश्वर अर्पण कर देते हैं, सब कुछ तेरा करके चलते हैं, तो हल्के हो जाते हैं, और जब हल्के हो जाते हैं तो चढ़ती कला क्या हमारी उड़ती कला हो जाती। परंतु जब मेरा समझते हैं तो उड़ने के बदले क्या होता है, हम नीचे आ जाते हैं। तो इसीलिए सदैव हमारी चढ़ती कला रहे, सदैव उड़ती कला रहे, और हम आगे बढ़ते रहे। तो हमारे को पहले तो ये दो बातें पक्की करनी पड़ेगी, एक तो आत्माभिमानी स्थिति और दूसरा ईश्वर अर्पण जीवन। तो जब अर्पण कर दिया हमने अपना जीवन ईश्वर के, तो हमारा जीवन एक दर्पण बन जाता, जैसा दर्पण अर्थात आईना, आईने में हमेशा मुखड़ा देखा जाता है, तो हम सदैव अपना मुखड़ा उसमें देख सकते हैं कि कोई दाग तो नहीं है। साकार बाबा हम बच्चों को कहते थे बच्चे तुम मधुबन में आते हो, मधुबन में जब भी आते हो तुम्हारे पास बहुत फुर्सत होती है, कोई काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, भोजन भी बनाना नहीं, तुमको एकदम फ्री है। जब भी तुम भोजन आदि खा लेते हो, फ्री हो जाते हो, तो हिस्ट्री हॉल में जाके बैठ जाओ। नीचे हिस्ट्री हॉल होता था उस समय, साकार बाबा के समय एक हॉल था सिर्फ, हिस्ट्री हॉल में बैठो, उसमें बाबा ने ट्रांसलेट का चित्र आज भी रखा है, लक्ष्मी नारायण वाला चित्र। बाबा कहते थे उसके सामने जाके बैठो और उसके साथ अपनी भेंट करो कि अभी तक हमारे अंदर कितने लक्ष्मी नारायण जैसे गुण आए हैं, क्योंकि हम सभी बहुत लंबा चौड़ा हाथ ऊपर करते हैं। जब भी किसी से भी पूछेंगे ना क्या बनेंगे, लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, तो सबके हाथ ऊपर होते हैं। परंतु अगर पूछेंगे राम सीता कौन बनेंगे, तो एक भी हाथ होता है किसी का ऊपर? कोई चाहेगा यहाँ है कोई राम सीता बनने वाला, हाथ ऊपर करो, कोई नहीं है, कोई नहीं। माताएं भी कोई नहीं बनेगी, सीता नहीं बनेगी, सब लक्ष्मी बनेगी। तो हरेक क्या चाहता है कि हम ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करें। कोई भी 14 कला नहीं बनना चाहता, सब 16 कला ही बनना चाहता। तो जब बाबा इसीलिए कहते थे तुम इस चित्र के आगे आके बैठ जाओ और फिर अपनी कंपेयर करो उससे कि हमारे में अभी कितना परसेंट उसमें से गुण हमने धारण किए। क्योंकि लक्ष्मी को वरने के लिए लक्षण चाहिए ना, लक्षण के बगैर तो लक्ष्मी को नहीं वर सकेंगे। तो कितने लक्षण देवता ही हमारे में आए हैं, हमेशा अपने को चेक करते रहो। हमारे को अगर सूर्यवंशी बनना है तो हमारी पुरुषार्थ की तीव्रता सूर्य के समान चाहिए ना। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कैसे बने? जिनका पुरुषार्थ तीव्र रहा, सूर्य के समान रहा, सूर्य हमेशा तीव्र होता है ना, तो जिनका पुरुषार्थ तीव्र रहा हमेशा, वो सूर्य वंश में आ गए। और जो चंद्रमा के माफक ठंडा पुरुषार्थ करने वाले हैं, वो चंद्र वंश में चले। तो हमने अपने पुरुषार्थ से ये पद प्राप्त किए ना, तो इसीलिए हमारे को हमेशा ये देखना है। मम्मा इसके ऊपर समझाती थी, तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेगी? क्योंकि एक तो आप देखेंगे संगम युग बहुत छोटा सा युग है, इस छोटे से युग में कोई कभी आया है, कोई कभी आया, और जिस समय उसने जन्म लिया तब से उसके लिए संगम चालू हो गए। भले संगम को 84 बरस हो गए, परंतु सबके लिए तो 84 बरस नहीं हुई है। किसी को एक बरस हुआ, किसको दो हुआ, किसको 40 हुआ, किसको 30 हुआ, किसको 15 हुआ, उनका तो तभी संगम चालू हुआ ना। तो इतने थोड़े से समय में हमको इतना ऊंचा पद प्राप्त करना है, इतनी ऊंची चाड़ी हमको चढ़नी है, इतना ऊपर चोटी तक पहुंचना है, तो उसके लिए हमारी स्पीड कितनी तीव्र होनी चाहिए। तो इसीलिए हम देखते हैं कि स्पीड को मम्मा हमेशा ये बताती थी कि हमेशा तीव्र सिर्फ पुरुषार्थी नहीं, पर तीव्र पुरुषार्थी बनो। तीव्र पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? एक बारी जो भूल होवे वो वापस कभी रिपीट नहीं होवे, उसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। और आप और हम क्या व्याख्या करते हैं पुरुषार्थी की? कोई ही अगर भूल होती है तो हम क्या कहते हैं? पुरुषार्थी है ना, पुरुषार्थ माना गलतियां करते रहो। परंतु नहीं, मम्मा ने हमेशा ये इस बात का ध्यान खिंचवाया, क्योंकि मम्मा का खुद का इस बात की तरफ ध्यान था कि जो एक बारी भूल हुई उसको वापस कभी जिंदगी में रिपीट नहीं करना है, तभी हम अपनी स्पीड को क्या कर सकते, आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर हमारे को हमारे लक्ष्य तक पहुंचना है, सदैव हमारे को चढ़ती कला नहीं पर उड़ती कला में रहना है, तो अभी भी बाबा ने हम बच्चों को, अव्यक्त बाबा ने खास विशेष ध्यान खिंचवाया। एक तो तुम्हारे को सबसे पहले क्या छोड़ना पड़ेगा? अलबेलापन छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, तुमको आलस छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, बहानेबाजी छोड़नी पड़ेगी। अगर इन तीन बातों का तुम त्याग करेगे तो तुम पुरुषार्थ में आगे जा सकते। क्योंकि चलते चलते अज्ञान की नींद में से तो उठ गए हम, परंतु कभी कभी अलबेलेपन की नींद में सो जाते। अलबेलेपन की नींद ऐसी है जैसा देखो हमेशा कहा जाता है, जो व्यक्ति सोया हुआ होगा उसको उठाना बड़ा इजी होता है, परंतु जो ढोंग करके ऐसा ही लेटा होगा आप कितना भी उसके लिए पुरुषार्थ करो उठेगा नहीं, हो आवाजें देते रहो हूं हाँ करता रहे, तो ये भी ऐसा है अधूरी नींद। अलबेलापन मना अधूरी नींद, पहुंच जाएंगे बाबा के बच्चे तो बन गए हैं ना बाबा, हम आपको बन के बताए बाबा को दिलासा देते हैं, बाबा आप देखना अंत में हम आपको जरूर बन के बताएंगे, आप फिकर नहीं करना बाबा। अब बाबा क्या फिकर करता है बोलो, फिकर तो हमें करनी है पुरुषार्थ, तो उसके लिए बाबा को दिलासा देते रहेंगे। और अलबेलेपन से हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा ने हमारे को इतना ज्ञान दिया है, हम सभी को ये तो पक्का है, बाबा कहते हैं अगर तुमने एक बारी भी दिल से बाबा कहा तो तुम्हारे को सतयुग में आने का पासपोर्ट मिल गया, तो हम निश्चिंत तो हो जाते हैं सतयुग में आने का पासपोर्ट मिल गया। परंतु जाके क्या बनेंगे, पास हो गए या फेल हो गए वो भी तो देखना चाहिए। देखो मम्मा जिस समय पर आई यज्ञ में, पहले दिन जब ही मम्मा आई, मम्मा बाहर चप्पल उतार रही थी, बाबा सामने गद्दी पर बैठे थे, बाबा ने देखा मम्मा आई तो बाबा ने मम्मा को देख करके माँ वाक्य उच्चारण किए, बाबा ने कहा ये तो कल्प पहले वाली राधा बच्ची आ गई। मम्मा ने वो सुना, उस दिन से लेके मम्मा की नींद फिट गई कि मेरे को राधा बनना है, मेरे को श्री लक्ष्मी बनना है, इसीलिए मम्मा सारी सारी रात बैठ के योग करती थी, तपस्या करती थी, अपने ऊपर मम्मा ने मेहनत किया, बाबा को हम सभी को, सिर्फ बाबा को नहीं पर हम सभी को गारंटी है कि ये मम्मा बाबा जाके लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, ये गारंटी होते हुए बाबा ने कितनी तपस्या किया, बाबा ने कितना अटेंशन दिया, और आपके और हमारे तो पद का ठिकाना ही नहीं है तो भी हम मजे से चल रहे हैं, और हमारे को अगर मालूम पड़ जावे कि हमारा फलाना नंबर आने वाला है हम तो चादर ओढ़ के आराम से सो जाएंगे, जब मेरा है ही फलाना नंबर तो क्यों पुरुषार्थ करें। तो ये बड़ा फर्क है मम्मा बाबा के पुरुषार्थ में और हमारे पुरुषार्थ में, ये बड़ा फर्क। परंतु हमको ये लगन लग जावे कि हमारे को बाप समान बनने का है, हमारे को श्री कृष्ण के साथ साथ राजधानी में आने का है, तो उसके लिए हमारे को उसके पीछे लगने की आवश्यकता है। परंतु अलबेलेपन में क्या करते, बाप मिल गया ना, भगवान मिल गया और घर बैठे मिला, बिगर मेहनत से मिला, क्योंकि हमने जब भी मेहनत किया, हमने जब भी ढूंढा तभी तो हमको नहीं मिला, उसने आके हमको ढूंढ के अपना बनाया, तो जब भी उसने अपना बना लिया हमको, घर बैठे मिला हमारे को, बिगर खर्चे मिला हमारे को, मेहनत के बिगर मिला, तो हम बहुत निश्चिंत हो गए कि अभी हमको बाबा मिल गया, हम बाबा के बन गए। परंतु क्या बने ये हम देखते हैं। तो बाबा कहता है ये जो अलबेलेपन की नींद है, इस अलबेलेपन की नींद को छोड़ो। फिर क्या करते हैं अलबेलेपन में, दूसरे को देखे, अरे ये फलाना है ना इतने बरस से चल रहा है, ये थोड़ा ही बदला है, अभी फिर हम बदलेंगे, बदल जाएंगे, हम भी बदल जाएंगे ऐसे, तो दूसरों के साथ क्या हो गई हमारी भेंट करना चालू कर दिया। बाबा कहते हैं औरों के साथ भेंट नहीं करो, तुम अपनी कमजोरियों की भेंट चढ़ाओ। जब तुम कंपेयर करते हो औरों के साथ, कमजोरों के साथ, तो क्या होता है, दिल शिकायत हो जाता है कि अरे यही नहीं बदला है तो मैं कहां से बदलूं। तो ये इसीलिए ठहरती कला होती है, ये अलबेलापन आ जाता है। ये पुराने ऐसे करते तो हम भी कर सकते हैं। उस दिन बाबा ने बड़ी अच्छी बात बताई, कहते बाबा ये महारथी भी तो भूले करते हैं ना। बाबा ने कहा जिस समय वो आत्मा भूल करती है उस समय वो महारथी नहीं है। भूल करने वाला कभी महारथी होता है क्या? तुम उसको फॉलो करते हो, मैं कहा क्या तुम मनुष्यों को फॉलो करो, बाबा को फॉलो करो, बाबा को सामने रखो। तो अलबेलेपन के कारण एक दो को देख के एक दो के साथ कंपेयर करके तीव्र पुरुषार्थ करने के बजाय ढीला पुरुषार्थ कर लेते। तो इसीलिए अगर हमारे को पूरा वर्षा बाबा से लेना है तो अलबेलेपन की नींद को छोड़ना पड़ेगा। बाबा दूसरे शब्दों में कहते थे दल्लब के गदेले लेके बच्चे सो जाते। दल्लब का गदेला बड़ा नरम होता है, आराम आता है उसके ऊपर लेटेंगे। तो ये दिलासे देते रहते बाबा को भी, ये दिलासा देना छोड़ दो। दूसरा हमारे को क्या करना है, कौन सा त्याग करना है, कौन से बात का आलस। आलस जो है, आलस ये पुरुषार्थियों का एक बहुत बड़ा दुश्मन। आलस आता है, आलस आता किस समय है, पढ़ाई के समय आलस आता है, कमाई करने के समय आता है, योग में कमाई होती है ना उस समय आलस आएगा, पढ़ाई पढ़ने के समय आलस आएगा, अमृत वेला होगा ना, आज जाने दो आज ना, सिर में दर्द है, सिर में दर्द भी कमाई के समय पर हो रहा, कभी पेट दुखेगा, कभी सिर दुखेगा, कभी कुछ दुखेगा, चालू रहे, कभी झुटका आएगा, कभी गुटका आएगा, कुछ ना कुछ चलता रहे। तो इसीलिए हमारे को चुस्त, क्योंकि हम योद्धे हैं, ये ध्यान में रखो। अगर युद्ध के मैदान में योद्धा झुटके खा रहा है, उबासियां दे रहा है, मार्शल क्या करेगा उसको बताओ, उसको रखेगा, उसको तो उसी समय निकाल देगा, डिसमिस कर देगा। तो हमारे सामने माया 24 घंटा खड़ी है। माया को ब्राह्मण बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, बाबा प्यार करता है तो ये भी प्यार करती है माया भी, क्योंकि हम आधा कलब के उसके ग्राहक हैं। आज किसी का एक ग्राहक भी थोड़े समय का, कहां दो चार बारी आप किसी से माल खरीद करो ना, फिर उस दुकानदार को छोड़ दो, दूसरे की तरफ जाओ, आपको अरे इधर आ इधर आ, तू मेरा पुराना ग्राहक, उसके पास क्यों जाते हैं, ले जा सामान, पीछे पैसा देगा तो भी चलेगा, जाना नहीं इधर। अभी हम आधे कलब से माया से माल खरीद करते आए, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, उसको छोड़ के हमने ज्ञान रत्नों का व्यापार चालू कर दिया, माया को कैसा सहन होगा बताओ। माया हमारे को अपनी तरफ खींचेगी या नहीं खींचेगी, तो वो अपनी तरफ बुलाती, इधर आओ इधर आओ, किधर जा रहे तो। अच्छा, ज्ञान की लोरी के बदले वो नींद की लोरी दिलाती। तो इसीलिए हम युद्ध के मैदान में हैं, हम यात्रा के ऊपर हैं, हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, अगर ऊपर से गिरेंगे तो हमारी हालत क्या हो जाएगी, ये सब बातें ध्यान में रख करके पीछे हमको चलना है। इसीलिए आलस हमारे को जरूर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके। तीसरा बाबा ने बताया बहानेबाजी। बहानेबाजी ये कला है ना, जैसा रस्सी के ऊपर चल के बताते हैं, वो बाजी लगाते हैं ना, उसमें पैसा कमाते हैं। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे बहानेबाजी में नंबर वन है, बहाने बनाते रहेंगे, कभी कहेंगे अच्छा आ जाए, तुम क्लास में नहीं आए, बहाना लगाएंगे, क्लास में नहीं आए क्या हुआ, हमारे पास मेहमान आ गए, फलाना हो गया, टीरा हो गया, बहाना। बाबा इतने दूर से रोज हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता है। आज किसी का टीचर अगर दूसरे गांव से भी आता होगा ना, बोलते बाबा हमारा टीचर ना बहुत दूर से आता, और बाबा कितने माइल दूर से आता है बताओ। वो कभी भी आलस नहीं करता है। कभी हम देखते थे रथ अगर ठीक नहीं होता था, तबीयत ठीक नहीं होती थी, तो बाबा मुरली लिख के देता था, मम्मा पढ़ के सुनाती। बाबा ने कभी बच्चों की मुरली मिस नहीं किया। हम लोग जब पार्टी लेके आते थे ना बाबा के पास, तो पहले तो इतनी सुविधाएं नहीं थी ना, तो ट्रेन में आएगी, हम लोग शाम को पहुंचते थे, वो तो बड़ा अच्छा मजे का समय था उस समय। आते थे फिर बस में, नीचे बस में नंबर लगा के फिर बस में बैठते थे, फिर ऊपर आते थे, फिर बस स्टॉप पर उतरते थे, फिर बैलगाड़ी में सामान रख, पहले तो बैलगाड़ी भी नहीं थी, मजदूर करते थे, वो सामान सिर पर रखता था, हम पैदल आते थे, फिर हमारी चढ़ती कला हुई, फिर बैलगाड़ी मिली हम लोगों को एक, तो सामान बैलगाड़ी में रख के हम पैदल आते, तो आते आते हमको शाम हो जाती। फिर जब ही पहुंचते थे स्नान पानी करके बाबा से मिलने को, जब बाबा आता था हाल, बाबा से मिलने के लिए जाते थे तो पहले बाबा प्रश्न पूछता था, आज की मुरली सुनी? अभी तो देखो ये रिवाइज कोर्स चल रहा है, इसीलिए पहले से एक एक मास पहले की मुरलियां आ जाती। उस समय तो बाबा की मुरली चलती थी और कोई साधन भी नहीं थे, इंटरनेट कुछ था थोड़ा ही, वो कभी पोस्ट होगा कभी आएगा कभी पड़ेगा, तो उस दिन की तो हमारी मुरली मिस हो गई ना। तो बाबा बोलता था, तुमने मुरली सुनी आज की? बाबा नहीं, हम तो ट्रेन में थे। बाबा बोलता था, जाओ पहले मुरली सुनो पीछे बाबा से मिलना, मिलता ही नहीं था, पहले मुरली सुनो आज की पीछे बाबा से आके मिलना। बाबा इतना इम्पोर्टेंस दिलाता था हमको कि पहले तुमको सुनना है, पहले तुमको धारण करना है, ऐसा ही तुम आगे शरीर को भोजन देते हो, मिस नहीं करते हो, आत्मा को भोजन देने को क्यों मिस करते हो? शुरू शुरू में यज्ञ में कोई बहुत बड़ी भूल करता था ना, तो उसको कड़ी सजा क्या मिलती थी, उस दिन उसकी बाबा की मुरली मिस, वो मुरली नहीं सुन सकता था, मुरली में बैठ नहीं सकता था आकर के, बाहर वरांडे में भी वो पहरे वाले होते थे उसको खड़ा नहीं रहने देते थे कि नहीं आज तुम्हारे को सजा मिली है, तुमको मुरली नहीं सुननी। वो बेचारा सारा दिन भोजन नहीं खाता था, कैसा खाएगा, आत्मा को भोजन नहीं दिया तो शरीर को कैसा देवे, लज्जा आती थी। तो अभी अपने से पूछो, हमारे को इतना मुरली का कदर है, हम चले है चढ़ती कला की तरफ, परंतु कदर है हमको इतना? आप बोलेगे बहन जी अभी तो कुछ नहीं, अभी तो इंटरनेट है, हमारे मोबाइल में मुरली आ जाती है, हाँ आज टीवी में मुरली चलती है तो सुन लेते हैं। परंतु आपको मालूम रहे कि प्रेजेंट मार्क के भी मार्क्स होते हैं फाइनल एग्जाम में, स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, उनके प्रेजेंट मार्क के अलग मार्क्स दिए जाते हैं एग्जाम में, तो उससे उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो हमारा भी क्लास में प्रेजेंट रहना बहुत ही आवश्यक है, उसके हमको मार्क्स मिलते हैं, उससे और हम आगे चढ़ते हैं। आप खुद समझ सकते हैं, आप घर में बैठ के मुरली पढ़ते हैं और क्लास में आके सुनते, इसमें अंतर है या एक ही है? अंतर है ना, क्योंकि हम जब ये संगठन देखते हैं इतना बड़ा, तो एक तो हमारे को संगठन का बल मिलता है, वाइब्रेशन मिलते हैं, और हमारे को खातरी होती है हम अकेले नहीं चल रहे हैं, हम बहुत लोग चल रहे हैं। मधुबन में क्यों आते हो? इसीलिए आते हो ना, इतना सबको देख करके हमारे अंदर शक्ति आ जाती है चलने की, कि हम अकेले थोड़े ही जा रहे हैं, अरे कितने चल रहे हैं बाबा के बच्चे, कितने इस मार्ग पर चल रहे हैं। वैसा भी आप देखो कहाँ भी जाना होता है तो अड़ोसी पड़ोसी, तुम चलेगा, मैं फलानी जगह पर जा रहा, तुम चलेगा, क्योंकि साथ होते हैं तो रास्ता जल्दी पास हो जाता है। तो ये भी जो ईश्वरीय मार्ग इतना लंबा मार्ग है, इसमें अगर हमारे को पुरुषार्थियों का साथ मिलता है, और वो भी अगर तीव्र पुरुषार्थियों का साथ मिलता है, तो हमारी स्पीड बढ़ जाती। तो इसीलिए संघ भी बहुत काम करता है, कहते हैं ना सत्संग तारे और कुसंग बोड़े। तो जितना जितना हम सत का संग करते हैं, बाबा के साथ तो बुद्धि का संग करते हैं, बाकी जो सत का संग करने वाले हैं उनका संग करते हैं, तो उससे भी क्या होती है, हमारी स्पीड आप ही बढ़ती जाती। तो इसीलिए बहानेबाजी करके कहते बाबा हमारे घर में मेहमान आ गए, बाबा कहता है परसों की मुरली में था, मैं कितना बड़ा मेहमान हूँ, मैं मेहमान बन के तुम्हारे पास आया हूँ। तो जब इतना बड़ा मेहमान हमारे पास आया है और हम एबसेंट रहे, वो आवे तो क्या कहे बताओ इस। तो इसीलिए बाबा कहता है ये बहानेबाजी को छोड़ दो, आलस को छोड़ दो, अलवेलेपन को छोड़ दो, फिर देखो तुम्हारी स्पीड कितनी बढ़ती, फिर तुम कैसे उड़ते हो देखो। परंतु अगर ठीक है हो जाएगा पहुंच जाएंगे, गे गे नहीं करो, गे गे छोटे बच्चे करते, बाबा को गे अच्छा नहीं लगता, बन के बताएंगे जरूर, बन जाएंगे नहीं, गे नहीं बोलो उसमें, गे बोला मानो कुछ गड़बड़ है, चले गए, ये चले गए क्या, चलना ही है, हम नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा। तो जब हमारा इतना आत्मविश्वास होता है, बाबा के ऊपर विश्वास होता है, तभी हमारी स्पीड क्या होती है, एकदम बढ़ जाती है। और जब भी हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, अपना सब कुछ सफल करेंगे, ईश्वरीय कार्य में लगाएंगे, ईश्वर के ऊपर अर्पण करेंगे सब कुछ, तभी क्या होगा, हल्के होकर के हम उड़ते रहेंगे। वैसा भी आप देखो, कोई भी चीज को आप नीचे खड़ा होके देखो तो उसका रूप आपको बड़ा दिखाई पड़ेगा, आप ऊपर से देखेंगे तो बड़ी चीज भी आपको छोटी दिखाई पड़ेगी। प्लेन से देखो इतने इतने बड़े पहाड़ छोटे खिलौने दिखाई पड़ते, नदी जैसा नाला जरा सा बह रहा है ऐसा दिखाई पड़ता है, और भी ऊपर चले जाओ तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। तो उसी प्रकार अगर कोई भी समस्या आती है, कोई भी बात आती है, आप उसको सामने खड़ा होके देखेंगे ना, आपको उसका विकराल रूप दिखाई पड़ेगा। परंतु बाबा ने हम बच्चों को युक्ति बताई हुई है कि कोई बात, कोई समस्या आई, परंतु आप अपनी ऊंची स्थिति में उठ जाओ कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान। आप ऊंची स्थिति में रह के फिर उसको देखो, आपको खिलौना लगेगा वो समस्या, समस्या नहीं लगेगी, आपको मनोरंजन का साधन लगेगा। इसीलिए आप उड़ना सीख जाओ, चलना तो ठीक है। तो जितना जितना हम ऊपर उड़ते जाएंगे, ऊपर उड़ेंगे तो क्या होगा, बाबा के नजदीक जाएंगे ना। बाबा कहता था अभी तुम बच्चों की स्थिति ऐसी होनी चाहिए, तुमको सतयुग के झाड़ दिखाई पड़ने चाहिए, सतयुग के महल दिखाई पड़ने चाहिए। हम कहा नजदीक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं कैसा मालूम पड़ेगा। आप देखो आबू के नजदीक आते हैं, मार्बल की फैक्ट्रियां आती है, आप कहते हैं अरे आबू आ गए चलो सामान समेटो, होता है ना ट्रेन में ऐसा कि नजदीक निशानियां रखते हैं ना कुछ ना कुछ। तो वैसा ही हम बाबा के नजदीक पहुंच रहे हैं, परम धाम के नजदीक जा रहे हैं, स्वर्ग के नजदीक जा रहे हैं, तो हमारे को वहां के नजारे दिखाई पड़ने चाहिए। जब भी हमको स्वर्ग के महल दिखाई पड़ेंगे, तभी तो इस पुरानी दुनिया के ठिकर ठोबर से हमारे को वैराग आएगा, नहीं तो कैसा आएगा। हमारी बुद्धि यहाँ से हटेगी कैसे, तभी हटेगी जब भी हमको वहां के नजारे दिखाई पड़े। तो बाबा इसीलिए कहता है, तुम बच्चे सिंधी में कहावत है षड पंद पर पहुंचे हो, षड पंद माना तुम आवाज दो सामने वाला सुने, वो तुमको रिस्पांस करे, तो तुम इतना स्वर्ग के नजदीक हो। सचमुच हमको ये अनुभव होता है, हम इतना स्वर्ग के नजदीक, हमारे को सब दिखाई पड़ते हो नजारे। तो जितना जितना हमारे हमारे आंखों के सामने नई दुनिया के नजारे हो गए, उतना उतना हमारा बेहद का वैराग बढ़ता जाए। उस दिन बाबा ने कहा बच्चे अभी तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए, ये दुनिया हमारे लिए है ही नहीं। जब दुनिया ही हमारे लिए नहीं है तो कौन हमारे लिए रहा, कोई भी नहीं। ये किसको अनुभव होगा, जिसने सर्व संबंध बाबा से जोड़े हुए हो गए, जिसने सर्व संबंधों की रचना बाबा से ली हुई होगी, उसको ये दुनिया भाएगी नहीं, अच्छी नहीं लगेगी, उसके लिए दुनिया है ही नहीं। गीत तो गाते हो ना, क्या गीत गाते हो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नहीं कोई, ऐसा ही गाते हो ना, या ऐसा गाते हो मेरा तो एक शिव बाबा और भी कोई कोई, हाँ कोई गाता है ऐसा, सभी एक ही गीत गाते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नहीं कोई। जब दूसरा कोई नहीं सचमुच ये शब्द जब भी बोलते हैं, तभी अपने को चेक करो कि सचमुच दूसरा कोई है या नहीं, क्योंकि हम सभी ने बहुत अनुभव किया, एक बारी नहीं दो बारी नहीं 63 जन्म अनुभव करके देख लिया कि देहधारियों से दिल लगाने से हमें क्या प्राप्ति हुई, और अभी जब ईश्वर के साथ दिल लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसका भी हम लोगों ने अनुभव कर लिया, इसीलिए तो भाग भाग के आते हो। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास है क्या मेरे को देने के लिए, हाँ पुराना तन, बाबा कभी कभी कहते हैं चत्तियां लगा हुआ तन, चत्तियां समझते हो, कपड़ा फट जाता है ना तो उसमें क्या करते टुकड़े लगाते हैं, तो आजकल ऑपरेशन होता है तो क्या चत्तियां ही लगाते हैं ना, चतिया लगा हुआ तन, काला धन, भटकता हुआ मन, यही तो देना है और क्या देना है। ये जब ही देगे तुम ऐसा ऐसा सड़ा हुआ सब कुछ माल देगे तभी क्या होगा, तुम्हारे को बाबा से नया मिलेगा सब कुछ। तो इसीलिए देना है तो अपना दिल उसको दो। जब हम अपना दिल उसको दे देते हैं तो वो बाबा क्या करता है, हमको अपने दिल में बिठा लेता। उसको दिलाराम कहते हैं ना। बाबा को कुछ नहीं चाहिए, वो तो दाता है, उसको क्या चाहिए, परंतु उसके उसको दिल का प्यार जरूर चाहिए। तो जिसका बाबा के साथ दिल का प्यार है, सच्चा प्यार है, उसको दिमाकाराम नहीं कहते, दिलाराम कहते। तो जिसका दिल का प्यार है ना, तो वो सदैव बाबा के दिल पर रहते हैं। और आप बताओ, बाबा के दिल पर माया आ सकती है क्या? माया की ताकत है आने की वहां। इसीलिए कहा जाता है, अगर आपको माया से बचना है तो शिव बाबा के गोदी का बच्चा बन जाओ। बाबा के गोदी का बच्चा बन गए तो माया आएगी नहीं। खुद को बचाने का बड़ा अच्छा तरीका है कि हम बाबा के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे को कोई फिक्र नहीं होती है, कोई चिंता नहीं होती है, सदैव क्या रहते हैं, निर्संकल्प रहते हैं। तो जितना जितना आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते जाएंगे, चढ़ती कला का आपको अनुभव होता जाएगा, उतना उतना आपको नई दुनिया याद रहेगी, अपना घर याद रहेगा, बाबा याद रहेगा, और कुछ याद आएगा नहीं, आपको याद करना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही याद आता रहेगा। तो अभी हम बच्चों की अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो और कुछ भी नहीं दिखाई पड़े, देखते हुए भी नहीं देखो बाबा का, आंखें थोड़ी बंद करेंगे, परंतु सदैव किसको देखते रहो, एक ही बाबा को देखते रहो, बाबा से ही सुनते रहो और बाबा के ही गुण गाते रहो। ठीक है, ओम शांति।
इतना